जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय
तेरा
परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की उपस्थित भक्तवृंद की जय उपस्थित भक्तवृंद की जय उपस्थित भक्तवृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ताय गौर प्रेमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एक बुक दे हरे कृष्णा इसमें से परम करुणा निकाल के दो परम करुणा सो आप सबका स्वागत है यहाँ इस्कॉन के श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मंदिर में रविवार के इस कार्यक्रम में। अभी बहुत ही जल्द हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव मनाने वाले हैं। कहना चाहिए कि इसी महीने में जन्माष्टमी का उत्सव होने वाला है। वैसे तो जन्माष्टमी अगस्त में आएगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग में विशेष रूप से कुछ प्रदान करने आए थे और उसी लिए हम लोग इस महीने की 23 तारीख को ये उत्सव मनाने वाले हैं, जिसे गौर पूर्णिमा उत्सव कहते हैं। भगवान के जब अवतार होते हैं तो उन अवतारों में अलग अलग श्रेणियां होती हैं अवतारों की। कुछ अवतार इस सृष्टि की रचना के लिए होते हैं, जैसे महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु, ये अलग अलग विष्णु के अवतार। कोई बातें कर रहे हैं शायद। ये हॉल बड़ा छोटा है, अगर कोई बातें करे तो हम तक सुनाई जाता है, इसलिए क्षमा चाहते हैं। थोड़ा समय, केवल 1 घंटा अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करें। तो कुछ अवतार होते हैं जो इस सृष्टि की रचना के लिए आते हैं, जैसे महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु इत्यादि। कुछ अवतार होते हैं जो लीला करने आते हैं, जिन्हें लीला अवतार कहते हैं। तो वे केवल आते हैं, लीला करते हैं, जैसे श्री कृष्ण, जैसे वराह, नरसिंह, राम इत्यादि, ये लीला अवतार हैं। और फिर कुछ अवतार होते हैं जो इस जगत में तीन गुणों को प्रकट करते हैं, उन्हें गुण अवतार कहते हैं। जैसे इस जगत में 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो कुछ अवतार इन 3 गुणों को प्रकट करते हैं, उनको गुण अवतार कहते हैं। कुछ अवतार होते हैं जो थोड़े समय के लिए आते हैं, एक मनु के समय के लिए, उसको मनवंतर अवतार कहते हैं। और थोड़े अवतार होते हैं जो शक्त्यावेश अवतार होते हैं, अर्थात भगवान किसी भी जीव को एक विशेष शक्ति प्रदान कर देते हैं कि आप ये कार्य करो, तो फिर वो शक्त्यावेश अवतार हो जाते हैं। कभी कभी जीव हो सकते हैं, कभी विष्णु भी हो सकते हैं। और एक अवतार की श्रेणी होती है जिन्हें युग अवतार कहते हैं। युग अवतार अर्थात हरेक युग में जो भी युग धर्म है उसको स्थापित करने के लिए युग अवतार आते हैं, युगा अवतार। जैसे अभी हम लोग इस समय कलयुग में हैं, कलयुग का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ये जो कलयुग का समय है, कलौ अस्मिन् युगे जना, तो ये कैसे हैं, इनकी आयु बहुत कम है, बुद्धि कम है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपदिता। इस कलयुग में हमारी शक्ति कम है, आयु कम है, और इसलिए इस कलयुग में जो युग धर्म है वो बड़ा सरल है। इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में करते हैं और वो कहते हैं, कलेर दोषो निधे राजन, अस्ति ही एक महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगह परम ब्रजेत। तो कहते हैं कि ये कलयुग दोषों का सागर है, कलेर दोषो निधे राजन, लेकिन इसमें एक महान गुण है, अस्ति ही एक महान गुण, और वो क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य, कृष्ण का कीर्तन करके ही, कीर्तनाद एव कृष्णस्य, केवल कृष्ण का कीर्तन करने से मुक्त संगह परम ब्रजेत, व्यक्ति मुक्त हो सकता है और परम धाम को प्राप्त कर सकता है। तो इस युग धर्म, तो इस युग का धर्म हुआ भगवान के नाम का कीर्तन, और उसको देने के लिए जब युगा अवतार का समय आया तो श्री कृष्ण ने सोचा कि मुझे स्वयं जाना चाहिए। अब कृष्ण कौन है? क्या वो भी एक अवतार हैं? श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि नहीं, एते चांश कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बहुत सारे अवतारों का वर्णन करने के बाद, आप इधर आ सकते हो, यहां पर कुर्सियां, बहुत सारे अवतारों का वर्णन करने के बाद भागवत में फिर वर्णन किया गया कि ये जितने भी अवतार वर्णन है, करीब 24-25 अवतारों का वर्णन हो गया, और कहा ये जितने भी अवतार हैं, एते च अंश कला, ये भगवान के अंश हैं या कलाएं हैं, कलाएं यानी उनका विस्तार है। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान हैं, ऐसा ही अन्य शास्त्रों में भी लिखा गया है। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में लिखते हैं, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतार मकरोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो। ब्रह्मा जी कहते हैं रामादि मूर्तिषु, राम इत्यादि जितने भी अवतार हैं, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार, और ऐसे बहुत सारे अवतार हैं, किंतु कृष्ण जो हैं ये स्वयं भगवान हैं। गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो वही कृष्ण ने सोचा कि मुझे खुद जाना चाहिए। उन्होंने एक भक्त का रूप लिया और एक भक्त के रूप में उन्होंने यहां पर लीला की और चैतन्य महाप्रभु कहलाए। अब किसी के मन में ये विचार आ सकता है कि अरे हमने तो अभी तक सुना नहीं भगवान के ऐसे, हमने तो केवल 10 अवतार सुने हैं अभी तक, दशावतार, तो भगवान के 10 अवतार नहीं हैं, असंख्य अवतार हैं, तो चैतन्य नाम भी नहीं सुना है। तो ये चैतन्य नाम बहुत जगह पर आया है, कई पुराणों में, कई शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन हुआ है कि किस तरह वो भगवान है। क्योंकि किसी को भगवान कब मानना चाहिए? जब उसका शास्त्रों में उल्लेख हो। ऐसे ही कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान कह दे, उसको भगवान नहीं मानना चाहिए, उसका शास्त्रों में उल्लेख होना चाहिए। तो क्या चैतन्य महाप्रभु का शास्त्रों में उल्लेख है, कहीं पर लिखा है कि वो भगवान है? तो हाँ, बहुत से पुराणों में इसका वर्णन आता है। जैसे गरुड़ पुराण में लिखा है, अहम पूर्ण भविष्यामि युग संध्या विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शची सुतः। भगवान कहते हैं अहम पूर्ण भविष्यामि, आगे चलकर मैं अपने पूर्ण रूप में प्रकट होऊंगा, युग संध्या विशेषतः, ऐसी विशेष युग संध्या में। युग संध्या मतलब जब एक युग समाप्त हो रहा हो और दूसरा प्रारंभ हो रहा हो, उसको युग संध्या कहते हैं। तो युग संध्या विशेषतः, और कहां प्रकट होऊंगा? मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि, भविष्यामि मतलब प्रकट होऊंगा, शची सुतः, शची माता के पुत्र के रूप में। और भी अन्य कई पुराणों में ऐसा वर्णन किया गया है। जैसे मार्कंड्य पुराण में वर्णन आता है, गोलोकम च परित्यज्य लोकानां तृणकर्णात् कलौ गौरांग रूपेण लीललावण्य विग्रह। गोलोकम च परित्यज्य, भगवान कहते हैं कि मैं गोलोक को त्याग कर, गोलोक में कौन रहते हैं? श्री कृष्ण। गोलोकम च परित्यज्य, गोलोक को त्याग कर लोकानाम तृण कारणात्, लोगों का उद्धार करने के लिए, कलौ गौरांग रूपेण, कलयुग में गौरांग महाप्रभु के रूप में, लीला लावण्य विग्रह, मैं ऐसे लीला करूंगा। तो देखिए, ऐसे कई पुराण हैं, कई शास्त्र हैं जहां पर बताया गया है कि गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण हैं। इसलिए केवल भावनाएं नहीं हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी उनको भगवान मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, शास्त्र उनको भगवान मानता है। शास्त्र में बड़ा स्पष्ट वर्णन है उनके भगवान होने का। तो आज से करीब 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर अवतरित हुए और जैसी उन्होंने घोषणा की थी पुराणों में, मायापुरे नवद्वीपे, नवद्वीप में, मायापुर में वो प्रकट हुए, जो आज कलकत्ता के पास है, पश्चिम बंगाल में। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने लीलाएं की। और क्योंकि अब 23 तारीख को हम लोग उनके आविर्भाव अर्थात उनके प्रकट होने का दिवस मनाने वाले हैं, तो आज से, आज अगले रविवार और उस दिन चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करेंगे। और उसमें भी सबसे प्रमुख लीला संन्यास लीला, चैतन्य महाप्रभु की संन्यास लीला। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में संन्यास ले लिया, केवल 24 वर्ष के थे और उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो क्यों संन्यास लिया, संन्यास लेकर क्या किया उन्होंने, इसको समझाने के लिए या इस लीला को बताने के लिए एक बहुत सुंदर भजन है कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कौन हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनके उनका क्या लाभ है उनके बारे में सुनने से, उनका नाम लेने से। तो एक ये भजन गाएंगे अभी और फिर उस पर चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर भजन है, कृपया आप सब सहयोग कीजिएगा। आपको बुक्स देंगे, बुक्स थोड़ी कम हैं, तो एक दो लोग एक एक बुक को आप लोग बाँट देख सकते हैं, एक किताब में से दो या तीन लोग। और ये पेज नंबर 67 पर है, पेज नंबर 67। तो इस भजन को गा के फिर चैतन्य महाप्रभु का वर्णन और उसके बाद उनकी संन्यास लीला का वर्णन करेंगे। पेज नंबर 67 पर आप इसको देख सकते हैं। परम करुणा अहो द्विजन निताय गौरचंद्र, परम परम करुणा अहो द्विजन निताय गौरचंद्र, परम करुणा अवतार सारशिव माने केवल आनंद कंद सब अवतार केवल आनंद कंद केवल आनंद कंद परम करुणा कहु दुर्जना निताय गौरचंद सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद केवल आनंद कंद केवल आनंद कंद बहुत सुंदर भजन है परम करुणा पाहु दुईजन। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अपनी परम करुणा को लेकर आए हैं और कौन है ये सब अवतार सार शिरोमणि सारे अवतारों के सार सारे अवतारों के स्रोत स्वयं श्री कृष्ण इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और एक ऐसे भक्ति के मार्ग को दिया है जो केवल आनंद का मार्ग है। केवल आनंद कंद केवल आनंद कंद केवल भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास कोरी भजो 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 भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास कोरी भजो विषय छड़िया विषय छड़िया सिर से मजिया मीठे बोलो हरि हरि विषय छड़िया बोलो हरि हरि मुख बोलो हरि हरि भजो भजो भाई चैतन्य नितार चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का भजन बड़े विश्वास से करना चाहिए, सुदृढ़ विश्वास। और जब हम ये विश्वास हृदय में लाएंगे तब हमारे मन से ये जो विषय वासनाएं हैं, वासना अर्थात किसी चीज को पाने की बड़ी तीव्र कामना, फिर वो धन हो, कोई अन्य भोग हो, मान प्रतिष्ठा हो, विषय छाड़िया तेरसे मजिया मुखे बोलो हरि हरि। जब ऐसे विषयों से दूर जाएंगे जिन्होंने हमें भगवान से दूर रखा है, ऐसे विषयों को त्याग कर भगवान के नाम में रस लेना प्रारंभ करेंगे, हमारी जिह्वा को एक रस लेने की आदत है और अगर उसे भगवान के नाम का रस प्रदान करेंगे तब भगवान की प्राप्ति होगी। और ये रस आएगा जब मुखे बोलो हरि हरि, मुखे बोलो हरि हरि, मुखे बोलो हरि हरि, मुखे देखो रे भाई त्रिभुवन नाई हे मन दयाल दाता, देखो रे देखो रे भाई त्रिभुवन नाई हे मन दयाल दाता, देखो पशु पक्षी जुरे पाचन विदारे शुनि जर गुण गाता, पशु पक्षी जुरे पशु पक्षी जुरे पाषाण विदारे शनि जर गुण गाता, पशुपति जुरे पाषाण शनि जर गुण गाता, शनि जर गुण गाता। सारे त्रिभुवन में उनसे दयालु और कोई नहीं, क्योंकि बहुत सरल मार्ग दिया है भक्ति का। क्या मार्ग दिया है? केवल भगवान के नामों का उच्चारण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बस भगवान की प्राप्ति उनके नामों के उच्चारण के द्वारा, इसलिए त्रिभुवने नानी एमुन दयाल दाता, इनके जैसी दया और कृपा करने वाला कोई नहीं है। और जब इनकी कथा सुनते हैं पशु पक्षी झूरे पाषाण विदरे, तो पशु पक्षी भी इनकी कथा सुनकर आनंदित हो जाते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इतना ही नहीं, पाषाण विदरे, पत्थर भी पिघल जाता है ऐसी कथाओं को सुनकर। शुनी जार गुण गाथा, शुनी जार गुण गाथा, संसार मजिया रोहिल पड़िया, से पद नहीं लो आशा, संसार मजिया रोहिल पड़िया, से पद नहीं लो आशा, तपन कराम अपन कराम गुंजाय समान कहे लोचन दास, अपन कराम कहे लोचन दास, कहे लोचन दास, संसार मझिया रोहिली पड़िया, सिपदे नहीं लो आशा। संसार में हम लोग पड़े हुए हैं, आनंद ले रहे हैं, कोई आशा नहीं है भगवान को प्राप्त करने की। लेकिन अगर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय लें से पदे, तो यही एक आशा है इस कलयुग में। आपन कर्म उंजाए शमन, हमारे जो कर्मों की अग्नि है जिससे हम सब कष्ट झेल रहे हैं, अलग अलग शरीरों में, अलग अलग घरों में अलग अलग प्रकार के कष्ट, इस अग्नि का अगर शमन करना है तो उनके चरण कमलों का आश्रय। परम करुणा बहु देहि जाना मिटाइ गौरचंद, परम सार शिरोमानी केवल आनंद चंद, केवल ಆನಂದ ಚಂದ ಕೇವಲ ಆನಂದ ಚಂದ ಕೇವಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತು ಚೇತನ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಿ ಪರಮ ಕರುಣಾ ಹೈ ಪರಮ ಕರುಣಾ ಪಹುದುಚನ ಔರ್ ಇಸಿ ಪರಮ ಕರುಣಾಕ್ಕೆ ಚಲತೆ ಉನ್ಹೊನೆ ಸನ್ಯಾಸ ಗ್ರಹಣ ಕಿಯಾ. ಚೇತನ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಾ ಜನ್ಮ ಹುವಾ ಯೆ ಐಸಾ ದಿನ ಥಾ ಜಿಸ್ ದಿನ ಸಾರೆ ಭಾರತ ಮೇ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಲಗಾ ಹುವಾ ಥಾ. और उस समय ऐसा नियम था कि जिस दिन चंद्र ग्रहण होता तो लोग पवित्र नदियों में स्नान करते और मुख से हरि हरि भगवान का नाम बोला करते. तो ऐसे समय में जब सारे भारत में सब लोग स्नान कर रहे थे, भगवान के मुख भगवान का नाम मुख से बोल रहे थे, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए. गौर पूर्णिमा का दिवस, पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण हो गया था. ऐसे बताते हैं कि चंद्रमा सोचने लगा कि स्वयं भगवान आ रहे हैं, मेरा सौंदर्य क्या है, तो इसीलिए उसने अपने आप को ग्रहण लगा लिया कि मैं छुप जाना चाहिए. तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं उन्होंने अपने बचपन में की. हम लोग प्रयास कर रहे हैं बड़े संक्षेप में इसको बताने का ताकि संन्यास लीला प्रारंभ कर सकें. बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं उन्होंने की, बड़े ज्ञान देने वाली लीलाएं की, आनंद देने वाली लीलाएं की. जैसे एक समय जब वो छोटे से बालक थे तो घर में जो मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकाया जाता था, फिर पकाने के बाद भगवान को जब अर्पण करने के बाद वो बर्तन फेंक दिए जाते थे बाहर, जूठे बर्तन. तो घर के बाहर थोड़ा सा ढेर लग गया था. तो एक दिन ये छोटे से बालक थे, जाकर बैठ गए उसके ऊपर, झूठा गंदे जगह पर. तो उनकी माता ने देखा और उनसे कहा कि अरे ये क्या कर रहे हो, ये कहाँ बैठे हो, गंदी जगह पर, यहाँ नहीं बैठना चाहिए. और इतना ही नहीं, वो मिट्टी भी थोड़ा खा रहे थे वहाँ. तो माँ ने कहा ये नहीं, ये क्या कर रहे हो. तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही, उन्होंने कहा कि ये जो मिट्टी है यही तो आगे चलकर अन्न बनती है जो हम लोग खाते हैं, इसी से तो अन्न निकलता है ना, मिट्टी का रूपांतरण है. फिर जब अन्न खा सकते हैं तो मिट्टी क्यों नहीं खा सकते. अभी उनकी माँ को समझ में नहीं आई इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से करने लग गए हैं. तो उन्होंने कहा कि ये तो सही है, लेकिन जब हमें जल लाना होता है तो हम मिट्टी में भरकर नहीं ला सकते हैं, मटके में भरते हैं जो मिट्टी से ही बनी है, लेकिन जल लाने के लिए मटका बनाना पड़ता है. इसी तरह अगर खाना है तो उसको अन्न बनाना पड़ता है, ऐसे नहीं खाया जाता. तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा हाँ ये बात तो सही है. इनके एक बड़े भाई थे, हमेशा भगवान का भजन करते, भगवान की कथा करते. माता पिता इतने प्रसन्न नहीं थे उनसे, क्योंकि हमेशा भगवान का भजन करते रहते थे, उनको घर में कोई रुचि नहीं थी, विरक्त थे. कभी कभी हम देखते हैं कि कई बालक बचपन से विरक्त होते हैं, ये उनके पूर्व जन्म का कर्म या कर्मों के फल होते हैं. क्योंकि पूर्व जन्म में इतनी भक्ति की होती है कि बस अब जन्म लेके कोई रुचि नहीं होती है इस जगत में, अब केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं. तो कभी कभी छोटा बालक बड़ा विरक्त होता है, लोग समझ नहीं पाते कि अरे ये कैसे हो गया. तो ऐसे ही बचपन से विरक्त थे और आगे चल के उन्होंने घर भी त्याग दिया, संन्यास ले लिया. माता पिता प्रसन्न नहीं हुए. तो चैतन्य महाप्रभु ये रहे घर में अपने माता पिता की सेवा के लिए. बचपन की बहुत सारी इनकी लीलाएं हैं, जैसे जब खेलने जाया करते थे नदी के किनारे, तो वहाँ पर जो ब्राह्मण पूजा किया करते थे, अपने पूजा का सब सामान रखते थे, ये जाके सब गिरा देते थे और उनको कहते थे कि अरे तुम गंगा की पूजा करते हो, जानते नहीं हो मैं गंगा का स्वामी हूँ, मेरी पूजा करो. तो सारे ब्राह्मण कानों पर हाथ रखते थे, विष्णु विष्णु विष्णु, ये बच्चा क्या कहता है, ये कहता है गंगा का स्वामी है, कितना पाप करता है। लेकिन वो जानते नहीं थे कि दरअसल चैतन्य महाप्रभु सही कह रहे थे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने फिर धीरे धीरे बड़े हो गए, पढ़ाना शुरू किया, विवाह किए। तो ऐसे पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने देखा कि एक समय जब उन्होंने भक्ति के लक्षणों को प्रकट किया, जब उन्होंने भगवान का वर्णन प्रारंभ किया, तो लोगों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये वो समय था जब ज़्यादातर लोग भक्ति से दूर चले गए थे। चैतन्य भागवत में वर्णन किया गया है कि ये वो समय था जब अच्छे से अच्छा ब्राह्मण भी केवल गंगा में स्नान करते समय एक बार मुख से गोविंद पुंडरीकाक्ष बस बोल देते थे, बस उनकी और कोई भक्ति नहीं थी। अगर भक्ति करनी भी होती थी तो ज़्यादातर कर्मकांड करते थे। कर्मकांड जानते हैं आप लोग, ऐसी क्रिया जिसको करने से कुछ प्राप्त हो। जैसे हम लोग कोई काम करना चाहें कि इससे मुझे ये लाभ मिलेगा भौतिक, तब तो मैं काम करूँगा। मान लीजिए आप सबको कहा जाए कि अगर आप रविवार को इस्कॉन मंदिर में आएंगे तो घर जाते जाते आपको 2 लाख रुपए की लॉटरी लग जाएगी, पक्का निश्चित, तो आप लोग आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, राइट? आएंगे या नहीं आएंगे? हम लोगों को लाभ चाहिए। तो ऐसा अगर हो तो यहाँ तो ऐसी भीड़ हो जाएगी कि हमको मंदिर तुरंत बड़ा बनाना पड़ेगा, मतलब लोग, क्योंकि वापस जाते जाते 2 लाख रुपए मिल जाते, लॉटरी लग जाती है, फिर हमें जगन्नाथ जी का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, लॉटरी भगवान हो जाएंगे, फिर जगन्नाथ जी नहीं रहेंगे। इन्हें कर्मकांड कहते हैं। कर्मकांड मतलब हम लोग कोई कार्य करें, कोई यज्ञ करो, कोई पूजा करो, कोई इत्यादि करो जिससे कोई लाभ हो, भौतिक लाभ। लेकिन इन कर्मकांड के परे भक्ति है। जैसे आप जानिए, जब हम लोग इस मनुष्य जीवन में आते हैं, अभी देखिए आपकी यात्रा कैसे प्रारंभ होती है, हम आपको बताते हैं। जीव की यात्रा तो कब से चल रही है कोई कह नहीं सकते। तो हम लोग कई योनियों में घूमते हैं, कई शरीर धारण करते हैं, और फिर धीरे धीरे मनुष्य स्तर पर आते हैं, 80 लाख अलग अलग शरीर धारण करने के बाद, अलग अलग योनियां धारण करने के बाद। और पहले जो मनुष्य बनते हैं वो मनुष्य स्तर पर नहीं होते, वो पशु स्तर पर होते हैं। तो पहले कुछ योनियां जो मनुष्य की 4 लाख योनियां हैं, उनमें से पहली कुछ जो हैं वो पशु के स्तर पर हैं। इसीलिए आज भी कई ऐसे मनुष्य हैं जो जंगलों में रहते हैं, हाथ से शिकार करते हैं और कच्चा मांस खाते हैं। आप जानते हैं, कई मिले हैं ऐसे लोगों से, ऐसे बहुत से लोग हैं। आप मिले? अंडमान में जावा, यस, ऐसे बहुत जगह पर हैं, अफ्रीका के जंगलों में बहुत हैं लोग, और भी कहीं जगह होंगे, तो आज भी हैं। तो वो कौन से स्तर पर हैं? वो पशु स्तर पर हैं, अभी मनुष्य बने नहीं है, लेकिन शरीर मनुष्य का है। तो हमारी देखिए प्रगति कैसे होती है। तो पहले हम वो बनते हैं, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे तथा कथित सभ्य पुरुष बन जाते हैं, मतलब कपड़े वपड़े पहनने लगते हैं, अच्छे टाई वाई वगैरह लगाने लगते हैं, लेकिन किसी नियम का पालन नहीं करते। ऐसे कुछ लोग हैं जो बिल्कुल कोई शास्त्र का नियम नहीं मानते, जैसा मन में आए वैसा जीवन जीते हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं, एक ही नियम है, जो मैंने कहा वो नियम है मेरा जीवन का। तो ऐसे कुछ लोग हैं। फिर उससे जब आगे बढ़ता है स्तर, तो व्यक्ति धीरे धीरे कुछ नियम का पालन, शास्त्र का पालन करने लगता है। कैसे? किसी को भुला के घर में यज्ञ करवाता है, चलो यज्ञ कराने से घर में शांति हो जाएगी, लोग वास्तु शांति इत्यादि कराते हैं घर में, फिर घर ओपनिंग होते ही अगले दिन झगड़ा करने लगते हैं, है ना? तो लोग उसको कहते हैं कर्मकांड। तो बुलाते हैं कि चलो ये करने से मिल जाएगा, वो भी अच्छी बात है। फिर जब उससे ऊपर आदमी उठता है तो थोड़ा ज्ञान लेना शुरू करता है, ये क्या है जगत, ये पेड़, ये पौधे, ये पर्वत। और फिर जब उससे ऊपर उठता है तो वो ये सोचने लगता है कि जो पेड़ पौधे पर्वत हैं इसके स्वामी कौन है, और उससे भी ऊपर उठकर वो सोचता है मेरे स्वामी कौन है। और मुझे क्या करना है। और फिर जब उस बात को जान जाता है तो वो सबसे ऊंचा स्तर है। तो ऐसे हमारी धीरे धीरे प्रगति होती है। तो ये वो समय था चैतन्य महाप्रभु का जब लोग ज़्यादातर कर्मकांड में लगे थे, भक्ति कोई नहीं करता था, भगवान बहुत थोड़े गिने चुने लोग थे, जैसे श्रीवास ठाकुर, अद्वैताचार्य इत्यादि। तो बड़ा दुख होता था उन लोग को देख कर कि अरे ये लोग भक्ति नहीं करते हैं। तो एक दिन अद्वैत आचार्य ने कहा कि मैं पूजा करूंगा भगवान की, भगवान को बाध्य करूंगा आने के लिए, और अगर फिर भी भगवान नहीं आए तो मैं ही सबको जलाकर खाक कर दूंगा। तो उसके बाद अद्वैत आचार्य ने, यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, वहाँ वो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और उनके साथ में सफ़ेद कपड़े सफ़ेद दाढ़ी वाले, वो अद्वैत आचार्य हैं। तो अद्वैत आचार्य ने फिर चैतन्य महाप्रभु को इस पृथ्वी पर लाने के लिए पूजा आराधना प्रारंभ की। और उन्होंने कौन सी पूजा की? बड़ी सरल। भगवान जो हैं वो बहुत थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं। तुलसी दल मात्रे न जले न चुलके न वा, ऐसा कहा गया कि अगर आप तुलसी का दल और थोड़ा सा जल भगवान को अर्पण करते हैं, विक्रीडन्ति, अपने आप को बेच देते हैं भगवान, भगवान भक्त वत्सलः, क्योंकि भक्तों के प्रेमी हैं, भक्तों को प्रेम करते हैं, इसीलिए केवल अगर कोई भक्ति से प्रेम से उन्हें तुलसी दल और जल अर्पण करता है, बस और कुछ नहीं चाहिए भगवान को, इतना ही कोई अर्पण कर दे। हाँ, दुर्भाग्य की बात यह है कलयुग में कि हम लोग वो भी करने के लिए रोज मंदिर नहीं आते हैं, है ना। आजकल तो सब कुछ कंप्यूटर पे हो गया है। थोड़े समय में ऐसा होगा कि ये जो हॉल है खाली रहेगा, हम यहाँ पर बैठेंगे, सामने कैमरा लगा होगा, आप लोग अपने अपने घर पे कंप्यूटर पे बैठकर देख रहे होंगे, है ना। आजकल बढ़ रहा है लोग, तो मंदिर कोई नहीं आना चाहता, सब कुछ वो क्या कंप्यूटर पर हो जाता है। हमें एक बार किसी ने कंप्यूटर का प्रोग्राम ला के दिया, तो उसमें आरती थी, एक बटन दबाओ आरती शुरू हो जाती थी, टन टन टन। हमने कहा कितना कलयुग बढ़ रहा है, अब लोग सब कुछ वहीं बैठे बैठे करना चाहते हैं। तो उतना भी लोग नहीं करते हैं कि आकर भगवान को तुलसी दल अर्पण कर दें, जल कर दें, भगवान ने कितना सरल कर दिया। तो खैर, तुलसी दल उन्होंने अर्पण किया भगवान को, और जल, गंगा का जल अर्पण किया, और केवल ये करने से भगवान प्रसन्न हुए और चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। और उनकी सबसे बड़ी करुणा ये थी कि जब उन्होंने देखा, चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि मैं इन लोगों को कह रहा हूँ भगवान की भक्ति करो, जैसे चैतन्य महाप्रभु कभी कभी वैसे गोपियों के भाव में चले जाते थे भक्ति करते करते, तो एक समय उनके शिष्य उन सब पढ़ा रहे थे, वे लोग उनको पढ़ा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु उनको पढ़ा रहे थे, अचानक चैतन्य महाप्रभु गोपियों का नाम लेने लगे, तो सारे जो उनके शिष्य थे कहने लगे, अरे ये क्या कहते हो, ये सब नहीं कहना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु उनको मारने के लिए भागे। फिर उन्होंने सोचा चैतन्य महाप्रभु ने कि ये लोग मेरे प्रति अपराध कर रहे हैं, तो मुझे संन्यास लेना चाहिए। तो उन्होंने संन्यास लिया, अपने लिए नहीं, लोगों को ज्ञान प्रदान करने के लिए, ताकि लोग मेरी बात सुने और कृष्ण की तरफ आए। तो अब वो चैतन्य महाप्रभु ने निर्णय लिया, उनका विवाह हो चुका था, पत्नी थी, एक माता थी जो विधवा थी, उनके पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी, और अकेले ही थे जो इन दोनों को संभालने वाले थे। और अब उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें संन्यास लेना है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने यह निर्णय लिया कि मुझे संन्यास लेना है, तो उस समय में उन्होंने पहले नित्यानंद प्रभु को एक जगह पर ले गए और उन्हें बताया। उन्होंने कहा, देखो मैं संन्यास लेने वाला हूँ, मैं सब कुछ त्यागने वाला हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं कृष्ण का भजन करूँ, तो इसीलिए तुम्हारा क्या कहना। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि अरे तुम्हारी माँ है, तुम्हारी पत्नी है, उन लोगों का क्या होगा, अन्य भक्तों का क्या होगा। इस समय तक चैतन्य महाप्रभु को सब लोग बहुत प्रेम करने लगे थे और वो कीर्तन किया करते थे, सड़कों पर रोज जाकर दिन में कीर्तन होता था, रात में घर में कीर्तन करते थे। तो भक्तों का क्या होगा, माता का क्या होगा, तुम्हारी पत्नी का क्या होगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि लोगों के उद्धार के लिए, समाज के जन कल्याण के लिए तो हमें अपने आनंद को त्यागना ही होगा। तो खैर नित्यानंद प्रभु चले गए, अन्य भक्तों से भी चैतन्य महाप्रभु ने एक दो भक्तों से कहा, किसी को विश्वास नहीं हुआ और सब सोच रहे थे कि शायद चैतन्य महाप्रभु भूल जाएंगे। वैसे चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर दिखते थे, उनके घुंघराले बाल थे, बड़ी बड़ी भुजाएं थीं, बड़ा सुंदर वर्ण था, गौर वर्ण, तप्त कांचन, सोने की तरह उनका वर्ण था, इसलिए बहुत सुंदर दिखते थे। अब भगवान हैं तो वो तो सुंदर होंगे ही, क्योंकि सारी सुंदरता उनसे आती है। तो ऐसे जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने की सोची तो सारे लोग दुखी हो गए। और फिर वो दिन आ गया। अब चैतन्य महाप्रभु ने सोच लिया कि हाँ मुझे संन्यास लेना है, लेकिन उन्हें अपनी माँ को बताना था, अपनी पत्नी को बताना था कि मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ, मैं सब कुछ त्याग रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु अब कैसे बताते, क्योंकि उनके लिए कोई और आश्रय नहीं था। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु एक दिन पहले, जिस दिन वो संन्यास लेने के लिए जाने वाले थे, उस दिन रात को उन्होंने अपनी माता को पहले ये बताया। तो उनकी माता ने जब ये सुना तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कि मुझे संन्यास लेना है। तो उनकी माता को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि पहले तुम्हारा भाई था वो चला गया, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, अब तुम तो मेरी आंखें हो, अगर तुम भी चले जाओगे तो मैं रहूंगी कैसे, जीवित कैसे रहूंगी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु, देखिए कभी कभी समाज के कल्याण के लिए या बड़े कार्य को करने के लिए व्यक्ति को कष्ट लेना पड़ता है। ऐसा नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु को दुख नहीं था अपनी माता को त्यागने का, लेकिन जब कोई बड़ा धर्म हो, बड़ा कार्य हो, तो उसके लिए छोटे धर्म को या छोटे कार्य को त्यागना होता है, एक बड़े धर्म के लिए, एक बड़े ऊंचे उद्देश्य के लिए। और जब तक त्याग नहीं हो, ऊंचा उद्देश्य प्राप्त नहीं होता। जैसे हमारी सेनाएं जब युद्ध होता है तो वो युद्ध लड़ने जाते हैं, तो वो लोग अपने अपने परिवार को त्याग कर जाते हैं। सैनिक का पता नहीं है कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा युद्ध से, लेकिन फिर भी वो जाता है। क्यों? क्योंकि उद्देश्य ऊंचा है, एक घर को छोड़ देगा लेकिन सारे राष्ट्र को बचाना है, देश को बचाना है, तो ये ऊंचा उद्देश्य है। तो ऐसे ऊंचे उद्देश्य के लिए अगर छोटा उद्देश्य छोड़ा जाता है तो उस सैनिक का गुणगान किया जाता है। मान लीजिए युद्ध करते करते अगर वो सैनिक की मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसका मान करती है, सब लोग मान सम्मान करते हैं, घर वालों को भी गर्व होता है कि हाँ मेरे पुत्र ने देश के लिए कुछ किया। इसी तरह एक ऊंचे उद्देश्य अर्थात सारे जगत को कृष्ण भावनामृत देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने का निर्णय किया। इसलिए हालांकि माता को दुख हो रहा था, लेकिन फिर भी ऊंचे कारण के लिए, ऊंचे उद्देश्य के लिए चैतन्य महाप्रभु ने इसको लेना सही समझा। और फिर उनकी माँ ने कहा कि मैं भी साथ में चलती हूँ, संन्यास तुम भी ले लो, मैं भी वहीं पर रहूंगी। खैर चैतन्य महाप्रभु ने बहुत समझाया, फिर उसके बाद वो अपनी पत्नी को बताने के लिए गए। रात्रि का समय था, उन्होंने अपनी पत्नी से जाकर कहा कि मैं संन्यास, वैसे पत्नी ने सुन लिया था कहीं यहाँ इधर उधर से बातें फैल रही थी, तो उन्होंने अपने पति से पूछा, मैंने सुना आप संन्यास लेने वाले हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैं संन्यास ले रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ नहीं, वैसे एक दृष्टि से उनकी पत्नी ने बहुत सहयोग किया था आगे, हाँ दुख तो उनको भी बहुत हुआ। तो खैर ये संवाद हो गया, रात्रि बीत गई, सुबह सुबह का समय था, चैतन्य महाप्रभु को जाना था। और उन्होंने देखा कि जब वो बाहर निकलने लगे, बहुत सुबह का समय था, उन्होंने सोचा मैं चला जाऊं कोई देखे नहीं। और जब वो बाहर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ दरवाजे पर ऐसे हाथ रखकर वहीं खड़ी है। रात भर वो वहीं खड़ी थी ये सोचकर कि ये चला ना जाए कहीं और मुझे पता नहीं चले। खैर चैतन्य महाप्रभु उनके चरणों को स्पर्श करते हुए निकल गए, उनको पता भी नहीं चला। और चैतन्य महाप्रभु चले गए, बहुत महत्वपूर्ण स्थान काटवा स्थान में आए जहाँ उनको संन्यास लेना था अपने गुरु से। अब जब चैतन्य महाप्रभु चले गए, सुबह सबको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु चले गए हैं, तो सब लोग रो रहे हैं और माता तो इतनी पागल हो गई, वो घूम रही है, भाग रही है, हर एक को पूछ रही है, मेरे पुत्र को देखा तुमने? और फिर सारे लोग ये सोचने लगे कि अब हमारे जीवन का लाभ क्या है, चलो जाके गंगा में डूब जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले रहे हैं, अब कभी हम उन्हें देखेंगे नहीं, बहुत दुख। और फिर ऐसे में चैतन्य महाप्रभु काटवा पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो उनके गुरु थे उनसे कहा कि मुझे आप संन्यास दीजिए। दरअसल ऐसा वर्णन है कि उस क्षेत्र के लोग भी उनके गुरु को बोल रहे थे कि इतना सुंदर लड़का है, इसको संन्यास दे रहे हो आप, गलत कर रहे हो। ऐसा कहा गया कि जब संन्यास देना होता है तो सर को शेव करने के लिए एक नाई को बुलाया उस समय, चैतन्य महाप्रभु के बालों को निकालने के लिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु के बालों को वो निकाल रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ रहे, पहले तो उसने मना कर दिया, उसने कहा इतने सुंदर बाल मैं नहीं निकालूंगा। खैर, लेकिन संन्यास लेना हो तो सारी सुंदरता, सारे आसक्तियों को त्यागना होता है। तो फिर उस समय उन्होंने उनके बालों को निकाला और सब लोग वहां पर भी बड़े दुखी थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे स्थिति में संन्यास लिया। और संन्यास लेकर सबसे पहले वो वृंदावन जाना चाहते थे, भगवान श्री कृष्ण की स्थली। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो वृंदावन जा नहीं पाए और घूम घाम कर वहीं वापस आ गए जहां से वो चले थे। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका वर्णन अगले रविवार को करेंगे, अभी समय हो गया है प्रवचन का। तो अगले रविवार को थोड़ा बहुत वर्णन संन्यास का करके फिर चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह से अपने संन्यास में भारत का भ्रमण किया, गोकर्ण भी आए थे वो, तो किस तरह से भारत में भ्रमण किया, किस तरह से अलग अलग स्थानों पर बहुत सुंदर कीर्तन करते हुए उन्होंने जीवों का उद्धार किया, और फिर कैसे चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में रहते हुए अपना जीवन बिताया, इसका वर्णन अगले रविवार को करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर उसके बाद हम लोग 23 तारीख को चैतन्य महाप्रभु की और आगे की लीलाओं को श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप में से किसी के कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं? तुलसी जल नहीं, तुलसी दल। तुलसी दल मतलब तुलसी का पत्ता, उसको पत्ता को, पत्ते को दल कहते हैं। अच्छा हुआ पूछा आपने। हाँ जी, हरे कृष्ण महामंत्र चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले किस ग्रंथ में आया है? कली संतरण उपनिषद। ये 108 उपनिषदों में से एक है और इस उपनिषद में ब्रह्मा जी और नारद मुनि के संवाद में ये महामंत्र आया है। तो ये वैदिक मंत्र है, वेदों में पहले से दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले सभी मंत्रों के शुरुआत में ओम क्यों आता है? क्योंकि हरेक मंत्र का उद्देश्य भगवान की भक्ति है। और ओम शब्द का अर्थ क्या है, भगवद गीता में भगवान कहते हैं प्रणव सर्व वेदेशु। जो प्रणव या ओमकार ये मंत्र है, ये मैं हूँ श्री कृष्ण कहते हैं। और अगर उपनिषदों में इसकी परिभाषा देखी जाए तो ओम शब्द ये 3 शब्दों से बना है, अ उ और म। तो अकार, उकार और मकार मिलकर ओमकार बनते हैं। तो इसकी परिभाषा उपनिषदों में दी गई है, अकार उच्चते कृष्ण सर्वलोकैक नायके, उकार उच्चते राधा मकार जीववाचकः। इसका अर्थ है, ओम शब्द का अर्थ उपनिषदों में दिया गया है कि अ अकार उच्चते, मतलब अकार श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है, अकार उच्चते कृष्णा सर्वलोकैक नायके, जो सारे लोकों के नायक हैं, प्रमुख हैं। उकार उच्चते राधा, उकार शब्द श्रीमती राधा रानी के लिए कहा जाता है। और मकार जीववाचकः, जीवों के लिए कहा जाता है। तो अ उ और म इन तीनों शब्दों में या ओम शब्द में भगवान, भगवान की अंतरंगा शक्ति और भगवान की तटस्था शक्ति जीव, ये तीनों आ जाते हैं। इसीलिए हर मंत्र के पहले ओम शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का, कोई जिज्ञासा मन में? ठीक है, तो कुछ सूचनाएं होंगी और उसके बाद कीर्तन और फिर प्रसाद ले सकें।
हरे कृष्ण, आप सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने बहुमूल्य समय रविवार के दिन आके कृष्ण कथा में अपना समय उपयोग किया है। इसी तरह से हर संडे को आप आते रहिए और हमारे मंडे को भी महाभारत कथा है हर सोमवार को शाम को 6:30 से 7:30, तो आप उसमें भी आएंगे। और जिस तरीके से गुरु जी अभी चैतन्य महाप्रभु की कथा सुना रहे हैं, उस तरीके से 23 मार्च को गौर पूर्णिमा का उत्सव है, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस, उसको बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप भी अपने पूरे परिवार और मित्रों के साथ में आइए। उसमें आप अगर कुछ स्पॉन्सर करना चाहते हैं, अनुदान देना चाहते हैं, वो भी दे सकते हैं। भगवान के लिए नई ड्रेस ला रहे हैं, उसके लिए 11,000 रुपये का अनुदान है और मंदिर को और अल्टर को सजाया जाएगा, उसके लिए फूल लगेंगे, उसके लिए 5,100 रुपये का अनुदान है और अभिषेक होगा उसके लिए 7,500 रुपये का, और प्रसादम है उसको 21,000 रुपये का स्पॉन्सर है। अगर आप पूरा देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, कुछ भाग देना चाहें उसके लिए भी दे सकते हैं। और इसके लिए अधिक जानकारी के लिए बाहर सचिव को बैठे और उनसे भी जानकारी दे सकते हैं। और आज के स्पॉन्सर हैं सूर्यांश स्वरूप, सूर्यांश स्वरूप अभी यहाँ से कारवार से जा रहे हैं, इसके लिए उन्होंने आज का संडे स्पॉन्सर किया।
और भी कोई है? सारे ला के रखो, सारे ला के रखो, ना टाइम वेस्ट करो। प्रश्न बहुत पूछता है और अच्छा है, क्योंकि प्रश्न पूछने से ज्ञान बढ़ता है, तो इसके अंदर अच्छा गुण है कि प्रश्न भी पूछता है और मंदिर आने की रुचि भी है इसमें।
अब हमारे अगले स्पॉन्सर हैं निखिल प्रभु जी, आज इनका जन्मदिन है,
सारे लेकर आता है। हमने सुना ये अच्छी पढ़ाई करता है, खेल कम करता है, ऐसा सुना है ना? सही सुना है, गलत सुना? गलत सुना।
हमारे स्पॉन्सर हैं रोहन प्रभु, रोहन को का जॉब लगाया है हमने, उसके लिए रोहन को आमंत्रित करना चाहते हैं।
हरी
हरी
बोल, हरी
बोल,
हरी बोल। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए, अगले रविवार भी आइएगा तो कथा जारी रखेंगे चैतन्य महाप्रभु के विषय में और संन्यास के बाद उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छी। अभी तो आज केवल आपको भूमिका बताई, इंट्रोडक्शन। अभी लीला अगले रविवार से प्रारंभ होगी। हरे कृष्णा। तो थोड़ा कीर्तन करेंगे, थोड़ी देर बैठे रहिए, थोड़ी देर बैठ कर कीर्तन करेंगे और फिर खड़े होंगे, ठीक है। Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे,
हरे हरे
hare 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 rama rama hare 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 rama hare rama 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 hare 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 rama hare rama ram ram hare hare
hare
hare krishna 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 hare 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 rama hare rama ram ram hare 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 ram ram hare hare hare
hare krishna hare krishna 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 hare 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 rama hare rama ram ram hare hare hare
Krishna, Krishna, Krishna,
जगन्नाथ स्वामी जय जय भद्रकाली
स्वामी दादा तो हमने जगन्नाथ 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 हर देगा जय तू भगवा
कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंतकोटि वैष्णववृंद की शिल प्रभुपाद की गाय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। तो भी आप सब प्रसाद के लिए जा सकते हैं। प्रभु जी इसके लिए प्रसाद हम हॉल में किचन में वहां पर प्रसाद की व्यवस्था है, माता जी के लिए यहां पर। तो जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री गौनिताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जयताय गौर प्रेमानंदे।